നിരന്താരം നമു സിദ്ധാടം നമു ആയിരിയാടം നമോ ബജായാടം നമോ നോയ് സകൃതാഹൂടം മംഗളം ഭഗവാൻ വീരോ മംഗളം ഗോതമോ ഗണി മംഗളം കുന്ദ കുന്ദാത്യം ക്ഷേമധർമ്മോസ്തു മംഗളം സർവമംഗള മാംഗല്യം സർവകല്യാണകാരകം സുധാനാം സർവധർമാണാം ചൈനം ജയതു ശാസനം ചൈനം ജയതു ശാസനം ചൈനം കോവലമേ സാഗ വിജ്ഞാന ശിവസ്വരൂപ ശിവകാർ നമോ ത്രയോഗ സമാരികെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് മേ ആനി പായാ I was in the network. So, aap logon ne discussion kiya mujhe aisa bataya Sachin ji ne. So, kya discussion kiya maine aap logon ne?
Sachin ji can do.
Aap logon ne kya discussion kiya? Kis chal pe discussion kiya? Hello. हेलो मानस
आई थिंक हमने सेवेंथ चंद पे किया था
सेवेंथ चंद पर अरे तो नेचर और मोक्ष से संबंधित भूल गए
हमने गुरुदेव का प्रवचन है ना तो हमने या योर आई थिंक सेवेंथ चंद गुरुदेव का प्रवचन जो हमने सुना था ना वो ही वापस हमने पढ़ा
अच्छा वही वाला डिस्कस ओके 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 ठीक है ठीक है तो गुरुदेव श्री ने उस प्रवचन में अग्रहित मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र की बात करी एंड उसके बाद ग्रहित मिथ्या कर वो आ रहे थे और हमारे 15 मिनट का कम्प्लीट हो गए थे हम जो बात कर रहे थे इसके पहले इन द लास्ट टू लास्ट क्लास हम लोगों ने इधर तक बात करी थी कि कुगुरु कुदेव और कुधर्म ये सबसे पहले देव अच्छे या बुरे नहीं होते देव तो सच्चे देव को ही देव बोलते हैं ठीक है जो बाकी के देव हैं वो एक्चुअली कुदेव मतलब बुरे देव नहीं है वो सच्चे देव नहीं होने से कुदेव कहलाते हैं तो उनको नाम दिया जाता है अदेव मतलब वो देव ही नहीं है और उनमें भगवान की कल्पना करना उनमें ऐसा मानना कि इनको नमस्कार करने से हमें सुख की प्राप्ति होगी तो उसको बोलते हैं कुदेव तो हमारी परिणति हमारा बिलीफ वो हुआ कुदेव उस समय एक सामने वाले भगवान को एक उसमें हमें एक उनको बिलीफ बनाया कि हाँ इनका मैं दर्शन करूंगा तो मुझे मेरी विश फुलफिल होंगी तो हमने जो भगवान नहीं थे उनको अपने बिलीफ में भगवान बनाया तो हमारा बिलीफ में बना वो कुदेव एंड उसको ही हम उपचार से भगवान को कुदेव बोल देते हैं ठीक है तो ये भगवान कुदेव बन जाते हैं बट एक्चुअली एक स्टोरी आती है ओके एक मुनिराज थे वो वाले मुनिराज को एक देव ने आकर परेशान किया ओके एंड फिर सब लोग परेशान होकर उस देव को ही भगवान मानने लगे तो अब वो देव भगवान है कि नहीं है नहीं है लेकिन उसकी हम लोगों ने थोड़ी सी पावर्स देके थोड़े से डर गए लोग और उन्होंने उसको शक्तिमान मान लिया उसको बहुत शक्तिशाली मान लिया भगवान मान लिया तो वो देव भगवान नहीं था हमने उसको माना एंड नाउ अब यदि वो मुनिराज उस देव को देख रहे हैं तो उसके लिए मुनिराज के लिए वो देव कुदेव है कि नहीं है
नहीं है
बताइए एक मुनिराज है उन पर एक देव उपसर्ग कर रहा है ठीक है तो ये क्या कुदेव है मुनिराज के लिए क्यों नहीं है कुदेव क्योंकि उसमें उन्होंने भगवान की कल्पना नहीं करी सी जिस पर हम भगवान की कल्पना करते हैं कि इनको मैं नमस्कार करूंगा तो या तो मुझे सुख मिलेगा या मेरी विश फुलफिल हो जाएगी ठीक है मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा तो जो भगवान नहीं है उन पर आपने ऐसा माना कि करेंगे तो जब आपने माना तब वो कुदेव बने उसके पहले तो जस्ट लाइक हम लोग सामने से निकल जाते इतने सारे भगवान होते हैं अदर, बट हम लोग कभी हमें भगवान की कल्पना नहीं करते, वो हमारे लिए कुछ देव नहीं है, हमारे लिए वो देव ही नहीं, हमारे लिए भगवान किसे कहते हैं, जो विद्रागी सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, तो हमारे लिए वो सब भगवान जो विद्रागी है। उसके बाद हमारे सेकंड थॉट कभी आता भी नहीं है कि चलो हम आज रुके और हम इनके पास दर्शन करने के लिए जाएं, राइट? नहीं आता ना। तो ये वाली बात उपचार से कहते हैं, जो भगवान नहीं है उनमें भगवान की जो कल्पना कर ली जाती है वो हमारा बिलीफ, उस बिलीफ के कारण वो सामने जिसमें कल्पना की है, इन विच वी हैव इंस्टीट्यूटेड आवर बिलीफ दैट ही इज भगवान, वो गुरुदेव नाम पा जाते हैं बिकॉज ऑफ अवर बिलीफ। बाकी ही इज नॉट देयर एट ऑल, वो देवगति के देव हो सकते हैं, उनमें कुछ विद्याएं हो सकती है, विद्या हो सकती है, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान वो कब बनेंगे, जब आप उनमें भगवान की कल्पना करोगे, और जो भगवान नहीं है उसमें भगवान की कल्पना करना वही तो गुरुदेव बनाता है, ठीक है। गुरुदेव श्री ने एक डेफिनेशन ली थी जिस पर हम डिस्कशन कर रहे थे, ग्रहित मिथ्या से किसे कहते हैं, ये वाली डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया था लास्ट लास्ट क्लास में, कि जो अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करे, समथिंग विच फर्दर स्ट्रेंथन अवर अग्रहित मिथ्यात्व इनहेरिटेंट बिलीव्स। तो ये कुदेव को गुरु को मानना हमारे अग्रहित मिथ्यात्व कैसे पुष्ट करता है, कि आप वीतरागी देव के अलावा यदि अन्य किसी को मान रहे हो, मतलब आपको कुछ इच्छाएं हैं, और इच्छाओं को होना वो किस तत्व संबंधी भूल है, निद्रा तत्व संबंधी भूल, और यदि एक तत्व संबंधी भूल है तो सातों तत्व संबंधी भूल है। तो आप ऑलरेडी भगवान के पास जाओगे इच्छा के लिए और मोटिवेट होगे, तो आपकी सातों तत्व संबंधी भूल और पुष्ट होगी और होगी, ठीक है, करेक्ट? यहाँ तक ठीक है?
हाँ जी,
हेलो,
यस, ठीक है,
ओके ओके ठीक है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन एनीबडी है अभी तक, ठीक है ना? हाँ, तो हर कोई कुदेव नहीं होता है, ठीक है। हम कुदेव यदि बोलते भी किसी को, देखो अरे वहां पर वो बैठे हैं वो कुदेव है, वो हमारे लिए कुदेव नहीं है, हमारे लिए वो देव भी नहीं है, ठीक है। हमारे लिए तो हमारे भगवान ही देव है, तो हमारे लिए कुदेव नहीं, हमारे लिए एक एक्वेंटेंस है। हमने जैसे रास्ते में 50 लोगों को देखा, ऐसे एक और चीज को भी देख लिया, हमने जैसे एक पेंटिंग को देखा वैसे हमने सीनरी को देखा, वैसे हमने वाली फोटो को स्टैच्यू देख लिया। तो दैट्स जस्ट अ स्टैच्यू और अ फोटो और अ पेंटिंग और अ वर्क ऑफ आर्ट और अ पर्सन और अ देव, देवगति का, दैट्स इट। वो कुदेव को गुरु नहीं है, एज लॉन्ग एज वी आर influenced by our fellow friend, oh, he's very good. उसके पास जाते तो हमारी फुलफिल होती है, तो हम you know attracted हो गए उनके पास, and now okay, I will also try. Try करने में क्या जा रहा है? जाके देखते एक बार. Now यहाँ पर ही becomes for the for us, because जो सच्चा देव नहीं है उसने आपने देसी कल्पना करी, and because ये लोग, इन पर बहुत सारे लोग इनको भगवान मानते हैं, हम नहीं मानते, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं ना, उनकी मान्यता के कारण हम लोग भी उनको कुलदेव कहते हैं, लेकिन जब तक हम उनको नहीं मानते तब तक वो हमारे लिए कुलदेव नहीं है। हमारे लिए कुलदेव तो है कि हम उनके पास नहीं जाना, लेकिन अभी हमने उनको कुलदेव नहीं माना, हमने उनको देव ही नहीं माना, तो अच्छा भी बड़ी विदेशी बात आएगी, ठीक है?
ठीक है,
हेलो, आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक मिथ्या दृष्टि कभी ये नहीं मानेगा कि वो हम कभी ये नहीं मानेंगे कि हम गलत मान रहे हैं। मैं बॉडी में बोलूं भाई मैं सही मान रहा हूँ, जब किसी पूछोगे डू यू नो योर सेल्फ, बोलो ऑफ कोर्स आई नो, आई एम 21 ईयर ओल्ड, आई लिव इन दिस सिटी, दिस इज ग्रेजुएटेड, मेरे ये ट्रेड से हॉबी पता लेगा, बता देगा, ठीक है, कंप्लीट। ही नोज हिमसेल्फ और नॉट, ही नोज हिमसेल्फ, व्हाई? बिकॉज ही डजंट नो व्हाट रियल सेल्फ इज, तो जब तक उसको ये नहीं पता डिफरेंट फ्रॉम द सोल, whatever he will know, he will only believe that he knows is correct. So, जो कुदेव को मान रहे हैं वो कभी नहीं बोलेंगे कि वो कुदेव को मान रहे हैं, वो ये बोलेंगे वो सच्चे देव को मान रहे हैं। तो आप किसी से जाके पूछोगे सच्चा भगवान कौन है, तो वो बोलेगा मेरा भगवान सच्चा है, ऑब्वियसली ना, वो थोड़ी बोलेगा नहीं हम कुदेव को मानते हैं, हमारे भगवान कुदेव है और हम उनको मानते हैं। कुदेव क्यों बोलेगा वो अपने भगवान को, तो कुदेव जैसी कुछ नहीं है। आप एक ढूंढने जाओगे, चलो मैं कुदेव को ढूंढ के लाता हूँ, आप एक से पूछोगे आपके भगवान कुदेव है क्या, तो नोबडी विल से मेरे भगवान कुदेव है, ओके ये हम व्यवहार से बोल रहे हैं, जो भगवान है उनमें भगवान, जो भगवान नहीं है उनमें भगवान की कल्पना करना, दैट बिकम्स कुदेव। लेकिन कुदेव नाम के कोई भगवान नहीं है, जो भी सच्चे देव के अलावा जिनमें भी भगवान की कल्पना की जाती है वो सब कुदेव है। और कुदेव तो इस बात को समझाने के लिए कि हम उनकी तरफ नहीं जाएं, हम सच्चे देव की तरफ जाएं। खत्म बात, इतनी सी बात।
ठीक है
पक्का एवरीवन? इट्स लाइक इट्स जस्ट एन इंडिकेशन, यदि आपको किचन की तरफ जाना है और हम बोले ये किचन नहीं है, यहाँ इस डायरेक्शन में किचन नहीं है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग दैट कि डोंट गो इन दैट डायरेक्शन, राइट? सिमिलर वे आपको यदि भगवान के पास जाना है तो हम बोलते हैं ये कुदेव है, इट ओनली मीन्स दैट यू डोंट हैव टू गो टू दिस भगवान, यू चेंज योर डायरेक्शन, यू लुक फॉर समथिंग एल्स, इट्स नॉट राइट, दैट्स ऑल, इतना ही है। अब वो वहां पर वॉशरूम है, वहां पर हॉल है, वहां पर गार्डन है, वहां पर पार्क है, वहां पर क्या है, वो हमें दिमाग ही नहीं लगाना, होल इंटेंशन इज टू गो टूवर्ड्स किचन, राइट? सो इफ आई नो दैट इट्स नॉट किचन, द किचन इज नॉट इन द डायरेक्शन, लीव इट, लेट्स गो टू दैट अदर डायरेक्शन। अब वहां पर क्या है, व्हाट्स द यूज ऑफ फाइंडिंग दैट आउट, दैट्स ओनली वेस्टिंग अवर टाइम। सेम वे यदि पता पड़ा ही इसको दे, मीन्स वी डोंट हैव टू बी, अच्छा उनके पास क्या क्या है, ओ वो वैकुंठ में रहते हैं, He has so many powers, वो ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो हमारा relevance का कुछ रहा ही नहीं ना उस direction में कुछ। The moment I know he is not Bhagwan, that's the only indication that we have to not see them. That's it. वो क्या है, कैसे है, that's none of our business. That's the only work of this word Kudev. Kudev word का काम सिर्फ इतना है कि हम बताते कि हमें यहाँ नहीं देखना है। उसके बाद वो कैसे हैं, कितने बुरे हैं, कितने लोगों को पागल बनाया है, इतने उनके भक्त हैं, इतने लोग उनको मानते हैं, सबसे ज्यादा इनको ही मानते हैं, इनका क्या होता है, मंदिर होता है, मॉस्क होता है, चर्च होता है, ये हमारा बिजनेस अब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है,
दैट
मच इम्पोर्टेंट द कुदेव वर्ल्ड इज। चलिए अब आगे चलते हैं। तो हमने इसके बाद पंडित दौलत राम जी ने 9th छंद में कुगुरु का लक्षण स्टार्ट किया था। कुगुरु कौन कौन होते हैं, अंतर रागादिक धरे जेह बाहर धन अंबर तैसनीह, देन 10th की फर्स्ट लाइन, धारे कुलिंग नहीं महत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। ये जो कुगुरु है इनका लक्षण बता रहे हैं। सबसे पहला अंतरंग में इनकी क्या होता है, राग आदि। अभी अंतरंग में राग आदि क्या है, अंतर में राग आदि होना मतलब क्या? कुगुरु की चर्चा चलती है तो हमारे हमारे सुगुरु कौन कौन होते हैं, पहले से ही बताइए, गुरु कौन कौन होते हैं?
हमारे गुरु के पास कुछ बाह्य परिग्रह नहीं होता है।
नहीं, उनके नाम, गुरुओं के नाम क्या क्या है, हमारे गुरु के नाम कुछ नाम है हमारे गुरु,
आचार्य उपाध्याय और साधु।
एक्सेलेंट, आचार्य परमिष्ठी, उपाध्याय परमिष्ठी, साधु परमिष्ठी, ये तीन हमारे गुरु हैं और अरहंत सिद्ध हमारे देव हैं। तो वो सुदेव, अरहंत सिद्ध, सुगुरु, आचार्य उपाध्याय, साधु परमिष्ठी, ठीक है। इनके अलावा जो भी गुरु आप बोलोगे वो कुगुरु हो जाएंगे, जो भी देव आप बोलोगे वो कुदेव हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। नाउ अब हमारे आचार्य उपाध्याय साधु के पास अंतरंग में राग द्वेष मोह होते हैं कि नहीं होते?
नहीं होते।
अरे
उन्होंने,
अरे राग द्वेष नहीं
होते, कम होता है जो वैसे नथिंग,
क्वेश्चन इज होते कि नहीं होते, होते कि नहीं होते,
संज्वलन का राग बाकी,
संज्वलन कषाय होती है ना, हाँ संज्वलन कषाय होती है, राग होती है, तो ग्रंथ लिखने का परिणाम, उपदेश देने का परिणाम, आहार लेने का परिणाम, ये सब होता कि नहीं होता उनके भी?
होता है।
तो अंतर रागादिक का क्या मतलब है फिर, यहाँ पर तो कुगुरु के लक्षण में बोल रहे कि जिसके अंतरंग में राग होता है।
राग द्वेष नहीं है
जहाँ पर भी, जहाँ पर भी ये वाली राग की बात आती है, समय सार की भी शैली है, ठीक है। राग द्वेष उसको भी कहते हैं जो मिथ्यात्व सहित का होता है। निर्जराधिकार में बोला ना, सम्यक दृष्टि के बंध नहीं होता है ना, क्यों नहीं होता भाई बंध, उसके तो राग द्वेष है कि उसके बंध होता है, लेकिन जैसा तीव्र बंध मिथ्यात्व के साथ होता था, उसका मिथ्यात्व चला जाने के कारण अब उतना तीव्र उसका राग द्वेष बचा नहीं, तो उसका बंध जो भी होता है वो बहुत नाजुक वाला होता है। तो जैसे कि एक हाथी को, वन एलिफेंट, आपने उसको बांधा हुआ है किससे, बनाना की लीफ से, ओके। बनाना की लीफ होती है, बड़ी होती है उसको, आपने उससे एक हाथी को बांध दिया है, अब बताओ वो हाथी बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ है,
बंधा हुआ है
अमानस, वो हाथी बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ है,
बंधा हुआ है।
ओके रिजल, आप है क्या
अपेक्षा से देखते हैं कि वो वैसे बंधा
वही मैं पूछ रहा हूँ, वही मैं पूछ रहा हूँ,
तो एकदम छूट सकता है तो उसी जो दूरी
के बंधा हुआ है, करेक्ट बात है, वो बंधा हुआ है, एकदम सही है, एकदम करेक्ट है, लेकिन यदि वो हाथी अपने आप को बंधा हुआ मानकर रोने बैठ जाए तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, राइट। वो यदि सोचे यार मुझे बांध के चले गए, क्या कर रहे हैं लोग मेरे साथ, तो वो हाथी मतलब ही इज़ लाइक रियली क्या कर रहा है वो, तो वो बंधा हुआ होते हुए भी नहीं बंधा हुआ जैसा है, वो अपना थोड़ा सा पैर ऐसा हिलाएगा और वो पत्ती टूट जाने वाली है, करेक्ट, वो इतनी नाजुक है। सेम वे जो हमारे मुनिराज के राग द्वेष है वो मिथ्यात्व रहित के हैं, तो वो उस पत्ती जैसे हैं जिससे वो एक आत्मा रूपी हाथी बंधा हुआ है, उसकी कोई ताकत नहीं है। तो यहाँ पर ये शैली है कि वो वाले राग द्वेष को हम राग द्वेष ही नहीं कहते, तो यहाँ पर किस राग द्वेष को लेना, जो मिथ्यात्व के साथ वाला राग द्वेष है। तो सबसे पहली कंडीशन सच्चे गुरु की होगी तो ये होगी कि वो सम्यक दृष्टि ही होता है, मिथ्यात्व रहित ही होता है। जब इन्होंने बोला अंतर रागादिक धरे जे, जो अंतरंग में राग द्वेष मोह को धारण करते हैं, आदिक में मतलब मोह, राग द्वेष आदि मतलब राग, आदि मतलब राग द्वेष और मोह, तीन चीजें, और जहां पर मोह आता है वहां पर आता है दर्शन मोह, दैट इज मिथ्यात्व। तो पहला में पहला लक्षण गुरु का होता है कि मिथ्या दृष्टि जीव गुरु नहीं हो सकते, उसमें गुरु कल्पना करना बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो साधर्मी हो सकते हैं, साधर्मी गुरु हो सकते हैं, लेकिन वो पूजनीय गुरु नहीं है, हम उनकी नमस्कार नहीं कर सकते, हम उनके पैर नहीं पड़ सकते ऐसे कि आपने धन्य हो आप तो गुरु हमारे, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ गुरु जो हमारे आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी है और जो हमारे टीचर होते हैं लाइफ में, ठीक है। तो गुरु में और टीचर में, गुरु की आप पूजन कर सकते हो क्योंकि वो सच्चे गुरु है। वो कौन है जो कि मोक्ष मार्ग को अकेली पढ़ाते ही नहीं है, उसका साथ में एग्जाम्पल भी देते हो, मीडिया पीआर करते हैं पूरा उसका, दे डोंट ओनली सेल देयर प्रोडक्ट, दे एक्चुअली यूज देयर प्रोडक्ट। बाकी हमारे जो विद्वान रहेंगे, गुरु रहेंगे, वो क्या करेंगे, दे आर ओनली इन द सेलिंग, दे नॉट यूजिंग इट। तो मैं आपको बहुत देर तक समय दृष्टि, समय ज्ञान, समय चैत की बातें बता सकता हूँ, आई एम सेलिंग इट, बट मैं समय दृष्टि, समय ज्ञान, समय चैत को यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये गुरु, इसलिए हम लोगों की बात में कोई इफेक्ट भी नहीं है, ठीक है। तो इफ द सेलर डजंट हैव कॉन्फिडेंस इन हिज ओन, जो भी वो अपना भेज रहा है प्रोडक्ट, देन हाउ विल ही कन्फाइड इन दैट प्रोडक्ट, राइट। तो सबसे पहले गुरु का लक्षण है कि वह पूर्ण राग द्वेष में रहित होता है, मतलब सम्यक दृष्टि होता है। अब सम्यक दृष्टि होते हुए भी भैया ठीक है, मेरे पास बहुत पैसा है और मेरे पास सम्यक दर्शन भी है, ठीक है, अब तो मैं गुरु बन गया। नेक्स्ट कंडीशन, बाहर धन अंबर ते स्नेह, कि उनके बाहर में धन, कपड़े, इन सबसे क्या होता है, स्नेह होता है, उनको इन सबसे क्या होता है, मोह होता है, एकत्व होता है, ममत्व होता है। देखो कितना कितना स्मार्टली दौलत राम जी ने लिखा, सबसे पहले स्टेप में उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले तो मिथ्यात्व को छोड़ो, इफ यू वॉन्ट टू बी गुरु, सबसे फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज वॉक, लीव मिथ्यात्व, चलो मिथ्यात्व छूट गया, अब बन गया गुरु, नो नो नो, अभी नहीं, अभी तुम्हारे पास दो टाइप का परिग्रह है, ठीक है, एक तो बाहर का परिग्रह और एक अंतरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह था मिथ्यात्व और कषाय, वो तुमने पहले स्टेप पे छोड़ी, बाकी सेकंड स्टेप पे क्या आया, बहिरंग परिक्रह। वो क्या क्या, आपके कपड़े से लेकर आपका सारा मकान, दुकान, कार, आपके जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं, जो भी हमारे सब कुछ है, ये सब यदि आपके पास सब ये भी है तो भी आप गुरु नहीं बन सकते, डिस्पाइट बीइंग अ सम्यक दृष्टि। आप यदि परिग्रहधारी हैं तो आप सच्चे गुरु नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिवली लिया है, हम पॉजिटिव देख रहे हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जिनके अंतर में रागादि होते हैं ये नेगेटिव है, क्योंकि गुरु की बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिवली सुगुरु की बात करते हैं। जिनके अंतर में अंतरंग परिग्रह है, जो कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो नहीं होते, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। जिनके बाहर में धन और कपड़े इत्यादि बहिरंग परिग्रहों से राग पाया जाता है, नेगेटिव। पॉजिटिव, जिनके बाहर में बहिरंग परिग्रह यानी कि धन वस्त्र आदि नहीं होते हैं, ये सेकंड ऑप्शन, सेकंड हुआ। तो अब भरत चक्रवर्ती वो सुगुरु है कि कुगुरु है जब वो अपने कोर्ट में बैठे हुए हैं, अपने किंगडम में, अपने राज दरबार में बैठे हुए, हाँ वो गुरु ही नहीं है, तो वो ना सुगुरु है ना कुगुरु है। ठीक है, हमें गुरु की कल्पना करनी है। तो अब कोई भरत चक्रवर्ती को लेकिन गुरु मान ले तो फिर क्या होगा, अब गड़बड़ हो जाएगी। वो सम्यक दृष्टि होती हुई भी उसकी कल्पना में क्या हो जाएंगे, कुगुरु हो जाएंगे, क्योंकि गुरु का ये वेश नहीं है कि वो राज दरबार में बैठे बीच में। ठीक है, बट वो उस पर्सन के लिए होंगे, उसकी मान्यता में होंगे, उसको अफेक्ट करेंगे। भरत चक्रवर्ती से जाके पूछे कि आप, मैंने सुना आप कुदेव बन गए हो आजकल, तो वो उनको नहीं पता है। सामने मैं देखा और मैं बहुत भरत चक्रवर्ती का एकदम उन्होंने मुझे मतलब बहुत महिमा आई उनके चरण, उन्होंने भी मेरे गुरु तो यही है। तो मेरी मान्यता में मैंने जो परिग्रह रहित नहीं है बहिरंग उसको गुरु माना, तो मेरी मान्यता में वो कुगुरु बने। ठीक है, ओके तो पहली कंडीशन अंतरंग परिग्रह जो कि मिथ्यात्व वो जाना चाहिए, सेकंड कंडीशन बहिरंग परिग्रह जो कि बाहर का जितना भी वैभव है वो जाना चाहिए, दो कंडीशन हो गई। चलो हमने एक अंतरंग परिग्रह भी छोड़ दिया, एक बहिरंग परिग्रह भी छोड़ दिया। इसके बाद अब कोई भी वेश में हम आ जाए क्या, कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जी आप अंतरंग और बहिरंग परिग्रह दोनों एक साथ छोड़ते हो तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आपका कोई और वेश होगा, आपका दिगंबर वेश ही होगा। दिस इज द रूल। यदि आप सम्यक दृष्टि हैं और आप परिग्रह का त्याग करते हैं तो निश्चित ही आप दिगंबर जैन मुनिराज ही बनोगे, कि आपको सम्यक दर्शन है ना, तो आपको पता है ना स्वरूप देवशास गुरु का, तो आपको पांच परमेश्वरी का स्वरूप अच्छे से पता है, तो आप दीक्षा लोगे तो सही लिंक ही लोगे। यहाँ पर नेगेटिवली क्या बोल रहे हैं कि देखो इनके पास सम्यक दर्शन तो है नहीं, इनका कोई बिलीफ का ठिकाना तो है नहीं, हाँ लेकिन इनने परिग्रह जरूर छोड़ दिया है, सब छोड़ दिया इन्होंने। तो इन्होंने जो धारण किया है वो कुलिंग है, इन्होंने जो भी वेश धारण किया है वही भले ही वो नग्न दिगंबर वेश हो तो भी वह क्या है, कुलिंग है, वो जैन लिंग नहीं है। अष्टपाहुर में एक लिंग पाहुर है, आप लोगों ने नाम सुना होगा लिंग पाहुर, नाम सुना है ग्रंथ का, हाँ ठीक है। अष्टपाहुर में आठ अलग अलग ग्रंथ हैं, दर्शन पाहुर, चारित्र पाहुर, सूत्र पाहुर, बोधि पाहुर, भाव पाहुर, ये सब इसमें एक है लिंग पाहुर। लिंग पाहुर में आप लोग को मिले बहुत छोटा है, अराउंड 34 गाथाएं है शायद, 27 कम है, मतलब बहुत कम गाथाएं है, नहीं अराउंड 15 है शायद, ठीक है, तो बट विद इन 40-50 गाथाएं हैं। सो उसमें मुनिराज के लिंग का, तो उसमें लाइन कैसी गाथाएं हैं क्या, कि जो जैन वेश, जो मुनिराज का वेश धारण करके लोगों को रिझाते हैं नटों के जैसे, जैसे कि एक एक्टर, एक नाटक करने वाला, एक अभिनेता लोगों को रिझाता है, जो नाचते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, हंसकर बात करते हैं, मजाक करते हैं, मतलब वे श्रमण नहीं तिरियंज है। उनको सीधे सीधे क्या बोला, वो मुनिराज नहीं है, वो क्या है, तिरियंज है। तो यहाँ पर कुलिंग मतलब ऐसा नहीं कि कोई दिगंबर जैन मॉन्क है और उसका कुलिंग नहीं है, वो कुलिंग ही है यदि उस लग्न वेश को धारण करके भी उसकी क्रियाएं 28 मूल गुणों के अखंडित पालन रूप नहीं है। सुलिंग कब बनेगा वो, जैन धर्म का लिंग कब बनेगा वो, द्रव्य लिंग, हम अभी भावलिंगी मुनिराज की बात नहीं कर रहे हैं, हम द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात कर रहे हैं। तो द्रव्यलिंग का मतलब ये नहीं कि हम नग्न दिगंबर वेश को धारण कर लिए और हम द्रव्यलिंग मुनिराज बन गए। नो, द्रव्यलिंग का मतलब होता है 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करना, ईर्ष्या समिति से चलना, ईर्ष्या समिति से खान, ये सारी समिति से चले आप, पंच महाव्रत का पालन करें, साथ आपके विशेष गुण हो, आप रात्रि में अल्प समय के लिए सोएं, ये सारे क्या है 28 मूल गुण। अब इनमें से एक भी यदि आपका गायब है तो वो जिनलिंग नहीं है, वो कहलाता है कुलिंग, वो द्रव्यलिंग भी नहीं कहलाता। आप द्रव्यलिंगी मुनिराज भी नहीं हो, आप जैन मुनिराज हो ही नहीं यदि आप 28 मूल गुण का पालन नहीं कर रहे हो। सिंपल, ठीक है। अच्छा, 28 मूल गुण के नाम कौन बताएगा? प्लीज 28 मूल गुणों के नाम, इंडिविजुअल नाम नहीं, बस ब्रॉड ब्रॉड। पांच महाव्रत हो गए, फिर हाँ अरे अच्छा, हम मुनिराजों को नमस्कार करते कि नहीं करते? गुरुदेव श्री को मानने वाले, सोनगढ़ मानने वाले मुनिराजों को नमस्कार करते कि नहीं करते?
करते हैं,
करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं, बराबर, ठीक है, थैंक यू, करते हैं हम। हाँ तो लेकिन अभी के मुनिराजों को नमस्कार क्यों नहीं करते? हाँ अरे बताइए क्यों नहीं करते? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? गुरुदेव श्री ने मना किया था, मत करो।
आपका
क्वेश्चन नहीं समझा?
नहीं।
अभी वर्तमान में भी मुनिराज होते हेलो अभी भी प्रेजेंटली मुनिराज होते हैं, लेकिन हम लोग उनके दर्शन करने को नहीं जाते। क्यों नहीं जाते?
क्योंकि वो सम्यक दर्शन रहित है, उसलिए भावलिंग नहीं है उसलिए।
नहीं तो सम्यक दर्शन के लिए बॉडी में कोई मीटर थोड़ी लगाए कि देख के पता पड़ जाए कि सम्यक दर्शन इनको नहीं है।
तो उनके में भी 28 मूल गुण जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं।
हाँ कौन से मूल गुण होते हैं? 28 मूल गुण, वो ही पूछ रहा हूँ मैं। 28 मूल गुणों के नाम क्या है?
पांच महाव्रत, पांच समिति,
हाँ,
छह आवश्यक, पांच इंद्रिय विजय, और छह शेष गुण।
हाँ, कौन से कितने गुण? शेष गुण,
शेष गुण के श्लोक, स्नान, भूमि,
नहीं 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 कितने? छह शेष गुण, कितने?
छह आवश्यक,
छह आवश्यक, और शेष गुण कितने होते हैं? सात। ओके थैंक यू, ठीक है। तो सिंपल है, पांच महाव्रत, पांच समिति, पांच इंद्रिय विजय, छह आवश्यक, 5 + 5 + 5 = 15 + 6 = 21, बचे सात, सात होते हैं शेष गुण, बचे हुए रिमाइंडर्स। ओके, ये 28 मूल गुण होते हैं। सी इफ वी से समवन, इफ यू टेल समवन कि भैया हम मुनिराज को नमस्कार क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सम्यक दृष्टि की मित्र दृष्टि है। हम किसी को देखकर ही नहीं बता सकते कि वो सम्यक दृष्टि की मित्र दृष्टि, और आपसे भी उसने पूछ लिया आपको कैसे पता? ही कैन नॉट से एनीथिंग। तो ये उसका लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्या है कि जो 28 मूल गुण का पालन करता है उसके जैन भगवान का लिंग है, भगवान का लिंग है, चिन्ह लिंग है, उसके जैन दीक्षा है, हम उसको नमस्कार कर सकते हैं। लेकिन जिसके 28 मूल गुण, क्योंकि हम 28 मूल गुणों का पालन देख सकते हैं, वो बॉडी भी है, दैट इज विजिबल, सम्यक दर्शन इज नॉट विजिबल, राइट। तो जिसके 28 मूल गुण का पालन है उसको नमस्कार किया जाता है, ठीक है, जब तक हमको पता, हमको तब, जब तक उसके 28 मूल गुण का पालन है तो वील अज्यूम कि चलो उसके सम्यक दर्शन है, अनटिल एंड अनलेस वो एक्सप्रेसली पता पड़ जाए, ठीक है। यदि पता पड़ जाए कि नहीं है तो भी नमस्कार नहीं होता है, ठीक है। ओके, लेकिन यदि नहीं पता पड़ेगा तो वी हैव टू डू नमस्कार, दैट्स इट. तो हमें वो टेस्टिंग भी नहीं करनी कि उनके सम्मित दर्शन है कि नहीं है. 28 मूलों का पालन हो रहा है, दैट्स इट, इट्स रिक्वायर्ड हो गया. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यदि हमारी ये है तो हमको 28 मूलों के नाम याद हो. ठीक है, पांच समिति के नाम कौन सुनाएगा? पांच समिति कौन कौन सी होती है?
इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, अदा निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन.
हाँ, क्या बात है, वेरी गुड. तो इरिया, इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और लास्ट वाली
प्रतिष्ठापन
समिति. मानस, रिजुल, रिजुल आप लोग हो क्या? आई एम नॉट श्योर. रिजुल एंड समीर,
यस,
हेलो, ओके. हाँ, तो आपने नाम सुने पांच समिति के पहले?
नो.
दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. वी मस्ट नो, मतलब हमारे मुनिराजों का स्वरूप क्या होता है, क्योंकि कल को हमारे सामने से मुनिराज निकल जाए सच्चे और हम समझ भी नहीं पाए तो बहुत अनफॉर्चुनेट होगा वो. ठीक है, ये 28 मूलगुण होते हैं हमारे. एक्चुअली ये वाला आएगा सिक्स्थ ढाल में, छठी ढाल मुनिराजों के स्वरूप पर है, बट उसको अभी बहुत टाइम है. तो हम जब यहाँ पर कुगुरु की बात कर रहे हैं तो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सुगुरु की बात करें. तो देखो एकदम सिंपल नाम, पहले हम सिंपल सिंपल नाम को पढ़ लेते हैं आज. पांच समिति को हम थोड़े टाइम बाद देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले पांच महाव्रत, ये क्या होते हैं? पांच पाप के नाम पता है आप सबको? पांच पाप कौन कौन से होते हैं? समीर पाप, पांच.
Violence, lying, theft, accumulation and unchastity.
Four way. Opis, what is violence? Then?
Theft.
Theft. Okay, violence ke baad kide theft, okay.
Accumulation.
Parigraha.
Accumulation. Parigraha. Okay. Two more.
Unchastity.
Violence is... Yeah. Okay. That's... Pushy. And...
Lying.
To lie. Jhoot bolna. Yeah. So, hinsa, jhoot, chori, kushil, parigrah. Ye hote hai paanch paap. Hum sabhi ko inka pura tyag nahi hota hai. While living in household, we cannot... हम पांचों पापों को पूरा नहीं छोड़ सकते, हमको थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ता है कभी ना कभी, है ना. तो थोड़ी ना थोड़ी हमारी हिंसा हो ही जाती है, हम खाना वगैरह बनाते तो हिंसा होती ही है. तो हम लोगों को होते हैं अणुव्रत. अणुव्रत मतलब हम इन पांच पापों का एक देश त्याग करते हैं, हम त्रस जीवों की हिंसा नहीं करेंगे. ये हमारा अहिंसा अणुव्रत हो गया. स्थावर जीवों की फिर भी हमको हिंसा करनी पड़ेगी, हम सब्जियां खाएंगे, हम आग चलाएंगे, हम फैन चलाएंगे, एसी चलाएंगे, ये सब क्या है? स्थावर जीवों की हिंसा करते हैं. ठीक है, मुनिराज के त्रस और स्थावर दोनों की हिंसा का त्याग होता है, तो उनको होता है अहिंसा महाव्रत. तो पांच पाप का उल्टा वो महाव्रत बन जाएगा. तो हिंसा पहला पाप था, तो पहला महाव्रत हुआ अहिंसा. सेकंड झूठ, तो झूठ दूसरा पाप है, तो दूसरा महाव्रत हुआ सत्य महाव्रत. वो सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे. तीसरा, ओके, तीसरा यहाँ पर क्या था? चोरी. तो यहाँ पर मुनिराज को क्या होगा? अचौर्य महाव्रत, उनके चोरी नहीं होती है. ठीक है, अचौर्य महाव्रत. चौथा, यहाँ पर कुशील है, तो मुनिराज के ब्रह्मचर्य होता है, तो वो ब्रह्मचर्य महाव्रत. फिर यहाँ पर परिग्रह होते हैं और मुनिराज पूरे अपरिग्रही होते हैं. ठीक है, तो उनके अपरिग्रह महाव्रत यहाँ पर होता है. ठीक है, ये हो गए पांच उनके महाव्रत. तो आउट ऑफ 28 पांच हमने पढ़ लिए. इसके बाद आपको पांच सेंसेस के नाम पता है? पांच इंद्रियों के कौन कौन सी होती है? पांच इंद्रियां,
स्पर्श,
रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण. स्पर्श यानी कि टच करना, रस मतलब टेस्ट, घ्राण मतलब टू स्मेल, ठीक है, और चक्षु मतलब साइट, इनकर्ण मतलब जिससे हम सुनते हैं, टू लिसन टू हियर, ठीक है, ये पांच सेंसेस होते हैं। मुनिराज में इन विजय पाई है, उन्होंने इनको जीता है, ये पांच इंद्रिय विजय। तो कौन कौन से होंगे पांच इंद्रिय विजय? सिंपल, स्पर्शन इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, घ्राण इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विजय और कर्ण इंद्रिय विजय। सिंपल है मानस? सिंपल समीर, निजुल?
हाँ जी,
सिंपल ना? पक्का है बड़ी? देखो मुनिराज को ऐसा मन नहीं करता कि आज पिज्जा खाना है कि बर्गर खाना है, ठीक है, उनको बिल्कुल भी मन नहीं करता। उनको ये भी मन नहीं करता कि आज खीर खानी है परासों पे एकदम अच्छी बनी हुई, या फिर आज तो नहीं रोटी मिल जाए बहुत आहार में, ऐसा मुनिराज नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उनके रसना इंद्रिय पर विजय है, उनको अपनी भूख पर, अपने टेस्ट पर विजय है, उनका टेस्ट उनको ट्राई नहीं करता कि यार आज मेरा केक खाने का मन है, मतलब मुझे केक चाहिए नहीं चाहिए, हम लोग मतलब नहीं मिलेगा तो हम लोग खाना नहीं खाएंगे, मम्मी लोग से बोलेंगे आप क्या बना देते हो रोज गंदा गंदा, राइट, हमको कोई पसंद नहीं आएगा घर का खाना। क्यों? बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन अवर रसना इंद्रिय, उन्होंने उसकी विजय प्राप्त करी है। हमको यदि बहुत ज्यादा ठंड है तो हमको हीटर चाहिए, हमको वार्म क्लोथ्स चाहिए, मुनिराज ने स्पर्शन इंद्रिय पर विजय प्राप्त करी है, तो उनको ठंडी गर्मी से कोई मतलब नहीं है। तो वो विदाउट एनी क्लोथ्स वो नदी के किनारे खड़े खड़े हो सकते हैं, वो गर्मी में एकदम वो पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने विजय प्राप्त करी स्पर्शन इंद्रिय में, उनको ठंडा गर्म कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट, उनको घ्राण इंद्रिय पर उनके सामने सुगंध दुर्गंध, जब सातों मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ था रक्षाबंधन की कहानी आती है ना, तो एक्चुअली मुनिराज के चारों तरफ आग जलाई गई थी और जितना भी गंदगी थी वो सारी फेंकी गई थी, जानवरों को जलाया गया था, इतनी बुरी स्मेल थी पूरे एरिया में। उसके बाद भी मुनिराज उतनी बुरे स्मेल में भी वहां खड़े रहे, उतनी गर्मी में भी रहे। स्पर्शन रसना घ्राण तीन हो गए। चक्षु, मुनिराज को अच्छा दिखना भी नहीं पड़ता और अच्छा देखना भी नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने गंदगी पड़ी है या अच्छा पड़ा हुआ है, क्योंकि उनको कलर अच्छा चाहिए, ये अच्छा दिख रहा कि नहीं दिख रहा, मेरे अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, ये चक्षु इंद्रिय संबंधी सब खत्म हो गया है। मुनिराज म्यूजिक नहीं सुनते, उनको पॉप रॉक ये कोई म्यूजिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके सुनना भी नहीं है, उनके कर्ण इंद्रिय पर विजय है, ठीक है। तो ये इंद्रियों के वो अधीन नहीं है, इसलिए वो पांच इंद्रियों को उन्होंने जीता है, ये उनके पांच अलग मूल गुण हुए, ठीक है, ठीक है। तो पांच महाव्रत जिसमें अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पांच महाव्रत हो गए। फिर हुई पांच इंद्रिय विजय, तो स्पर्शन इंद्रिय को उन्होंने जीता है, रसना इंद्रिय को जीता है, घ्राण इंद्रिय को जीता है, चक्षु इंद्रिय को जीता है और कर्ण इंद्रिय को, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ठीक है। अब नौ पांच होती है समिति, पांच क्या होती है? समिति, समिति मतलब सीमित करना, टू रेस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ, ठीक है, सीमित करना इज टू रेस्ट्रिक्ट, अपने को एक बाउंड्री में लाना, ठीक है। सबसे पहली समिति थी ईर्ष्या समिति, आप लोग रिपीट करेंगे, समीर मानस, क्या नाम है? ईर्ष्या समिति,
ईर्ष्या,
आप लोगों ने पढ़ रखा हो तो प्लीज मुझे बता देना, हाँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको याद होना चाहिए बाय हार्ट। ईर्ष्या समिति, ईर्ष्या, ओके रिजुल आप हो ना, आपकी आवाज में एक बार मुझे रिजुल, ओके और कोई है दिया, आप भी हो क्या? नहीं, दिया नहीं होगी, ठीक है। तो ईर्ष्या समिति, ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या अभिगमन करना, हम चलते हैं, तो मुनिराज चलते हैं कि नहीं चलते? वो भी चलेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, चलेंगे। तो हम लोग तो कैसे चलते हैं, इधर उधर देख कर कि कितना प्यारा गार्डन है, कितना प्यारा मौसम हो रहा है, कौन कौन सी शॉप्स है, हम पूरी चलते भी जाएंगे, विंडो शॉपिंग भी कर लेंगे, पूरी देखते रहेंगे कहाँ पर क्या लेना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ठीक है। मुनिराज ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब चल रहे हैं तो इट इज पॉसिबल कि नीचे रास्ते में कहीं चीटियां हों, कहीं छोटे मोटे कीड़े जा रहे हो, और मुनिराज ये तो अहिंसा महाव्रत है, उनको तो किसी भी की हिंसा नहीं करनी है। तो मुनिराज अपने हाथ के चार हाथ आगे की जमीन को देखकर चलते हैं, मतलब उनका अभी जहाँ पर स्टेप है उससे फोर अपने हाथ होते ना, हाथ मतलब जस्ट से फोर फीट है, स्मॉल फीट, उतनी जमीन देखकर चलते कि इतनी जमीन में कोई जीव तो नहीं है जिससे पहले मैं कदम रखने से पहले उसको देख लूं, वहां पर पैर नहीं रखूं, ठीक है। मुनिराज भागते नहीं है, वो दौड़ नहीं सकते क्योंकि उसमें हम नहीं देख सकते नीचे क्या है, ठीक है। ये मुनिराज की क्या हुई, एरिया समिति। एरिया समिति मतलब चार हाथ के आगे की जमीन को वो देख कर शोध कर चलते हैं, मतलब कोई जीव तो नहीं है जिस पर मेरा पैर रखा जाएगा। तो मुनिराज जब भी चलेंगे, चलते समय वो बात नहीं करेंगे, वो नीचे देखेंगे, ठीक है। जो एरिया समिति हो गई, फाइन। सेकंड, भाषा समिति। अब मुनिराज बोलेंगे तो ऐसा नहीं कि हमको बोलेंगे तो चिल्लाने लगेंगे, डांटने लगेंगे, कुछ भी बोलेंगे, गंदे शब्द बोलेंगे, नहीं। भाषा समिति से क्या होता है, उनके या तो वचन निकलेंगे ही नहीं, शांत ही रहेंगे, और यदि निकलेंगे तो हम सबके लिए जो हितकारी है मीठे हैं और अहित को हरने वाले हैं, उपकारी हैं, ऐसी भाषा वो बोलेंगे। तो उनके जो वचन होंगे वो बहुत नपे तुले होंगे, मीठे होंगे, उनकी वाणी में किसी को बुरा नहीं बोला जाएगा, डांटा उतनी मंद कषाय है उनके, तो वो ऐसा कुछ करते। अब जैसे कि देखो वो शेर हिरण को खा रहा है, तो मुनिराज ऊपर सुत रहे, बोली अरे तुम क्या कर रहे हो, हिरण को थोड़ी खाते हैं, डांट नहीं रहे उसको। तो बोले अरे जी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो भगवान होना है। इतने प्रेम से, इतने करुणा से उनके वचन निकले। वो सामने उसके मुंह में पूरा एक जिंदा हिरण को वो मार के खा रहा है, फिर भी मुनिराज उसको दुत्कारते नहीं है, कर्ज नहीं करते, क्या कर रहे हो तुम यार, कैसे हो, मुनी बनाते हो वहां पर। उनके भाषा समिति है वो वहां पर सबको हितकारी मधुर वचन ही बोलती है, ये भाषा समिति है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड समिति होती है एशना समिति। एशना समिति क्या होती है कि वो श्रावकों के घर पर, जो कि उत्तम श्रावक हो, उत्तम श्रावक मतलब जो लोग रात में नहीं खाते हो, जिनके घर में जमीकंद आदि नहीं बनते हो, जो प्रतिदिन मंदिर में पूजन प्रक्षाला आदि के लिए जाते हो, जो जिन धर्म को समझने वाले हो उनके यहाँ। ऐसा नहीं कि जैन के यहाँ जाते हैं, नॉन जैन के यहाँ नहीं जाते, नहीं, ये डेफिनेशन नहीं है। जिस भी, यदि वो जैन का भी घर है एंड इफ इन दैट हाउस भोजन अच्छे से नहीं बनता है, ऐसी चीजें नहीं बनती हैं जो कि, ऐसी चीजें बनती हैं जो कि नहीं खानी चाहिए, तो मुनिराज वहां पर नहीं जाते। तो उत्तम श्रावक मतलब जिनके घर में जो खाने योग्य भोजन है वो ही बनता है, अभक्ष नहीं बनता, तो ऐसे मुनिराज, ऐसे के श्रावक के यहाँ वो खड़े होकर 46 दोष के बिना, उनके भोजन के भी अंतराय होते हैं, अंतराय कहलाते हैं, उसके बिना वो आहार करते हैं, ठीक है। इसलिए आहार करते हैं, भूख लगने पर आहार करते हैं क्या कि नहीं, भूख तो लगेगी बहुत टाइम तक, एक बार ही खाते हैं दिन में तो ऑब्वियसली भूख तो लगेगी, ऑब्वियसली लगेगी उनको, क्षुधा वेदनी कर्म का उदय तो आएगा क्योंकि उनके वो वाला कर्म अभाव नहीं हुआ है, लेकिन भूख के वो अधीन नहीं है क्योंकि उन्होंने रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लिया है। तो जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम हो लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, कई बार हमें भूख लग जाती है तो हम चलो कोई बात नहीं, ऐसे वो सहन उस पर ध्यान नहीं जाता उनका, वो ठीक है। लेकिन अब जब वो आहार करने आई गए हैं तो अब जैसे उन्होंने देखा तो वो ये नहीं सोचते हैं कि ये वाला भोजन मेरी भूख को मिटाएगा, उनका भोजन होता है तप की वृद्धि के लिए कि देखो भोजन लेंगे तो शरीर में थोड़ी शक्ति आएगी, इससे हम और अच्छे से अपना तप कर पाएंगे। तो उनका भोजन एशना समिति के कारण स्वाद के लिए नहीं होता, पेट भरने के लिए नहीं होता, ठीक है, बहुत भूख लगी है इसलिए नहीं होता, किस लिए होता है, तप की वृद्धि के लिए, मात्र तप की वृद्धि के लिए, मेरा शरीर हेल्दी रहेगा, नो दैट इज नॉट माई इंटेंशन, क्योंकि वो शरीर मेरा है ही नहीं। तो फिर आप आहार करने के लिए क्यों आते हो महाराज, क्योंकि हमारे तप में वृद्धि हो, हम और अच्छे से तप में लग पाए, ठीक है। एशना समिति हुई। नेक्स्ट, नेक्स्ट समिति है आदान निक्षेपण। आदान निक्षेपण, आदान मतलब लेना और निक्षेपण मतलब देना, रखना, ठीक है. तो देखिए मुनिराज के पास कमंडल होता है और तीची होती है, ठीक है. और कुंकिनी मुनिराज के पास शास्त्र भी हो सकते हैं. अपने पास अभी टाइम है ना? हाँ हमारे पास टाइम है. मुनिराज के पास पिछी होती है, कमंडल होता है और वो चाहे तो शास्त्र भी रख सकते हैं. इनके अलावा उसके उनके पास और कुछ नहीं हो सकता, करेक्ट? ठीक है. नाउ अब हम ये देखें कि मुनिराज ने शास्त्र को लिया, ठीक है. तो मुनिराज शास्त्र को पूरी विनय के साथ दोनों हाथों से लेंगे और अब वो शास्त्र को रखेंगे कहीं पर तो पूरा साफ कर. अब मुनिराज खुद बैठ रहे हैं तो पहले वो पीछे से उस जगह को साफ करेंगे, फिर वहां पर बैठेंगे. मुनिराज शयन करने के लिए लेट रहे हैं तो जहां पर उनको शयन करना है वहां पर वो लेटेंगे और एक करवट से लेटेंगे. वो रात को सोते समय अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? अदर्स रात को सोते समय मुनिराज करवटे क्यों नहीं बदलेंगे, पोजीशन चेंज क्यों नहीं करेंगे?
Not to harm anything.
हाँ, क्योंकि अभी तो जब वो लेते हैं उस पोजीशन में तो उन्होंने जीवों को अलग कर दिया है वहां से अपनी पीछे से, करेक्ट. अब लेकिन जब वो सो रहे हैं उस सोते टाइम जहाँ पर वो लेते नहीं है बाजू में वहां पर कोई चीज आ गए, यदि वो करवट लेंगे तो वो चीज दब के मर नहीं जाएंगे. वो तो जमीन पे ही सोते हैं ना, हमारे बेड पे नहीं, बेड वगैरह उनके कुछ नहीं होता है जहाँ पर कीड़े वगैरह नहीं आते हो शायद, राइट. तो आप जंगल में तो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं. तो यदि वो करवट लेंगे तो इतने सारे जीवों की हिंसा हो जाएगी. इस आदान निक्षेपण समिति के कारण वो वहां पर सब सो रहे हैं तब वो करवट बदल के नहीं सोते हैं. एक बार जिस पोजीशन में सो गए उसी पोजीशन में इतने जागृत रहते हैं कि मेरी करवट नहीं बदले. ओके, सोते हुए भी उनकी इतनी जागृति रहती है, ठीक है. हमको तो क्या पता है, हम लोग तो कई बार एक साइड इस साइड बैठ कर सोते हैं और हमारा दिन दूसरी साइड पर होता है बैठ के, राइट. कितना चेंज आती कभी, बस मुनिराज की जागृति सोते हुए भी इतनी है, ठीक है. अब आदान निक्षेपण में पहले तो जहां पर भी बैठेंगे उसको साफ करेंगे, फिर जब वो मलमूत्र का निक्षेपण वगैरह करती तो वहां पर भी जहां पर भी जिसकी जगह पर जा रहे हैं वहां पर वो पहले सफाई करेंगे, हर जगह की सफाई करेंगे. यदि वो श्रावक के घर भी आए और बैठ रहे हैं या प्रवचन के लिए भी बैठ रहे हैं, गुफा में भी बैठ रहे हैं, आदान निक्षेपण समिति के कारण इन सबको देखभाल से रखते हैं और देखभाल से उठाते हैं. तो शास्त्र को ऐसे ही नहीं उठिए, पहले शास्त्र को साफ करेंगे, ऊपर कोई जीत तो नहीं बैठा है. वो कमंडल पीछे को भी ऐसे कहीं नहीं रख देंगे, पहले साफ करेंगे फिर कमंडल को रखेंगे, ठीक है. ये उनकी आदान निक्षेपण, आदान मतलब लेना, निक्षेपण मतलब रखना. तो देख कर लेते हैं और देख कर रखते हैं अपने सारी सारी चीजों को जो भी उनके पास है. क्या क्या चीज होती है उनके पास? उनके पास एक तो खुद का शरीर है जिसको रखना होता है, फिर उनके स्पीच ही और कमंडल और शास्त्र हो सकते हैं. तो इन तीनों को जहाँ आपकी वृद्धि होगी वहां पर बहुत जान देख कर जान बूझ कर रखेंगे, अच्छे बूझ समझ कर. लास्ट समिति है, देखो पहली समिति थी एरिया, भाषा, एशना. एरिया चलने के ऊपर है, भाषा बोलने के ऊपर, एशना भोजन के ऊपर. चौथी आदान निक्षेपण चीजों को रखने के ऊपर. पांचवी है प्रतिष्ठापन समिति. तब जो मुनिराज है वहां जंगल में कोई टॉयलेट्स वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं बराबर. तो जब मुनिराज अपने शरीर के मल का परित्याग करते हैं, ओके, और जब जैसे कि उनका शरीर में अपने कितनी सारी चीजों की कफ आता है ये सब तो मुनिराज के भी शरीर में आता होगा, तो वो उसको हर जगह, जैसे इंडिया में आप लोग देखोगे कहीं पर भी कोई भी थूक जाता है बहुत गंदगी हो जाती है, तो लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होती है, चलो आपने थूक दो गंदगी तो ही अलग बात है, कोई बात नहीं, ठीक है. जंगल में कहाँ पता पड़ना है कहीं भी थूक दो, बट प्रॉब्लम ये है कि जहां पर आप थूक रहे हो वहां पर उसमें जीव उत्पन्न हो गया, राइट. या फिर यदि वो आपने रोड पर थूक दिया तो वहां पर जीव उत्पन्न होंगे, प्लस वहां से बहुत सारी गाड़ियां भी निकलेंगी तो गाड़ियां उसके ऊपर से रन ओवर भी होंगी, ठीक है. तो हमारी छोटी छोटी चीजों से कितने जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और कितने जीवों की हिंसा हो जाती है. तो मुनिराज को इतना विवेक है कि वो जहां पर भी अपना मलमूत्र का परिक्षेपण करते हैं वो ऐसे स्थान पर करते हैं जहां पर ज्यादा जीव नहीं आते हो, ऐसे स्थान पर करते हैं जहां पर पहले से जीव हो नहीं, और फिर उसको करने के बाद वो इंश्योर करते हैं कि वहां पर फर्दर जीवों की उत्पत्ति नहीं हो, जितना हो सकता है वहां पर उतना वृत्ति पूर्वक करते हैं. तो शरीर के मैल को वो जीव रहित स्थान पर त्यागते हैं, वो कफ को, मल को, मूत्र को, वो हर जगह नहीं, बहुत विवेक से कहाँ पर डालना चाहिए, कहाँ पर ये फेंकना चाहिए, वो उसको वहां पर उस तरीके से करते हैं। ये उनकी क्या है? प्रतिष्ठापन। प्रतिष्ठापन मतलब अच्छी तरीके से परित्याग करना। तो वो कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर जीव रहित स्थान हो, वहां पर पहले से वो जीव रहित हो और वहां पर ज्यादा जीव जाते भी नहीं हो, जिससे वो गलती से पैर भी ना रखे और हिंसा भी वहां पर ना हो। ठीक है, ये पांच समिति हो गई, पांच महाव्रत, पांच इंद्रिय विजय, पांच समिति, 15 बराबर। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब छह आवश्यक होते हैं। ये छह आवश्यक हमारे भी होते हैं, षट आवश्यक हमारे थोड़े डिफरेंट होते हैं, मुनिराज के थोड़े डिफरेंट होते हैं। हमारे छह आवश्यक कौन कौन से हैं? आप लोगों ने बाल बोध में पढ़ा होगा मानस, छह आवश्यक, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम, चेति, गृहस्थानाम, षट कर्माणि, दिने दिने। तो देव पूजा, एक श्रावक को हर दिन सबसे पहले क्या करना चाहिए? देव पूजा करनी चाहिए, गुरु की उपासना करनी चाहिए, फिर स्वाध्याय करना चाहिए, संयम से रहना चाहिए, फिर स्वाध्याय, संयम, फिर तप। तप यानी कि थोड़ी सी हार्डशिप, सामायिक कर दिया, ऐसा ही तप करना चाहिए, और दान, दान देना चाहिए। ये छह काम है जो हमको डेली करने चाहिए। ऐसे ही मुनिराज के भी छह काम होते हैं जो उनको डेली करने चाहिए। वो छह आवश्यक, आवश्यक मतलब कंपल्सरी, छह चीजें वो कंपल्सरी नहीं करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले सामायिक, सामायिक में समता भाव से वो रहते हैं, तीन टाइम होता है, हर घड़ी का अलग अलग, अपने लिए तीन टाइम, मुनिराज के छह आवश्यकों में वो पूरी प्रोसेस में आता है। फिर क्या? स्तुति करते हैं देवशास गुरु की। तो मुनिराज मंदिर तो रोज आते नहीं, जंगल में मंदिर कहाँ मिलेगा, इसका मतलब वो भगवान को भूल ही जाते होंगे कि नहीं, वो दिन में तीन तीन बार क्या करते हैं? सामायिक करते हैं, उसका स्तुति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, स्तुति स्तवन करना देवशास गुरु की। फिर क्या करते हैं वो?
देव वंदना,
जिनेन्द्र भगवान की पहले देव वंदना करते हैं, मतलब स्तुति करना, मतलब गुणों का उच्चारण करना। ठीक है, हम स्तुति पढ़े, और वंदना मतलब फिर उनको नमस्कार करना। पहले आपने, हमने आपकी बहुत प्रशंसा करी और फिर हमने आपको नमस्कार किया भगवान को। ठीक है, तो वो पहले सामायिक करेंगे, स्तुति करेंगे, वंदना करेंगे, उसके बाद स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं और कायोत्सर्ग करते हैं। स्वाध्याय, अपना स्वाध्याय करते हैं, वो चिंतन, मनन, ग्रंथ का आधार लेकर कुछ भी करके उनका स्वाध्याय होता है, तो मुनिराज को भी रोज स्वाध्याय करना पड़ता है। ठीक है, और क्या करते हैं वो स्वाध्याय के बाद? प्रतिक्रमण मतलब सबसे क्षमा मांगते हैं पूरे कायोत्स, और फिर प्रतिक्रमण के बाद उनका होता है कायोत्सर्ग। ठीक है, ये मुनिराज को रोज करना ही है। कायोत्सर्ग मतलब अपनी ऐसा आसन करना जिसमें अपन कंसंट्रेट कर पाए, तो खड़े हो जाएंगे, पद्मासन लगा लेंगे, खड्गासन लगा लेंगे, ये सब क्या है? कायोत्सर्ग है। छह आवश्यक कौन कौन से हुए? सामायिक, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग। सामायिक करेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे, फिर भगवान को नमस्कार करेंगे मतलब वंदना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, उसके बाद प्रतिक्रमण, क्षमा मांगेंगे और कायोत्सर्ग करेंगे। ठीक है, ये छह आवश्यक है, ये छह आवश्यक मुनिराज में होने चाहिए कंपल्सरीली, एवरीडे, एवरीडे एक्टिविटी। और इसके बाद सात शेष गुण है जो एकदम सिंपल है। देखिए कौन कौन से शेष गुण? सबसे पहले मुनिराज स्नान नहीं करते, वो नहाते नहीं है,
केश लोम
क्यों नहीं नहाते मुनिराज? क्यों नहीं नहाते? हम भी नहाना छोड़ते हैं, कौन नहाए? मुनिराज भी नहाते हैं, हमारे स्वामी नहीं नहाते। हाँ, कि मुनिराज नहाएंगे तो उनको पाप पड़ेगा और श्रावक भी नहीं नहाएंगे तो उनको पाप पड़ेगा। ओके, हमारे शरीर, हम लोग इतने परिग्रह के बीच रहते हैं तो हम कपड़े वगैरह पहनते तो हमारे शरीर में उतनी अशुद्धि हो ही जाती है, जिसके कारण हमें स्नान करना आवश्यक है। विराज की दिशाएं ही कपड़े हैं, तो उनकी नेचुरली शुद्धि हो जाती है, उनको नेचुरली इतना पसीना वगैरह उनके शरीर में इतना वो नहीं हो पाता है, वन थिंग। सेकंड, उनको राग नहीं है शरीर से, तो राग नहीं है इसलिए शरीर को श्रृंगार करने की उस संबंधित क्रियाएं भी नहीं है। तो मुनिराज के स्नान का त्याग होता है, हमारे यदि स्नान नहीं हो तो हमको पाप पड़ेगा, तो हमारा स्नान करना दैनिक कर्तव्य है, मुनिराज का स्नान नहीं करना ये दैनिक कर्तव्य है। लेकिन मुनिराज के फिर भी एक स्नान होता है, दंड स्नान, ठीक है। जब मुनिराज से कोई प्रतिज्ञा टूट जाती है, बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, तो वो अपने आप को दंड देने के लिए दीक्षा छेद करके स्नान करते हैं, मतलब अपने ऊपर पानी का क्षेपण करते हैं, ठीक है, वो दंड विधान के अंदर आता है। बट वो स्नान यानी कि हमारे जैसा नहाना नहीं है, वो एज अ पनिशमेंट स्नान है, ठीक है, वो दंड स्नान है। तो वो वाला नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ स्नान, एज अ नहाना, क्योंकि पहला उनके स्नान होता है, नहाते नहीं है, दूसरा वो ब्रश भी नहीं करते, दंत धोवन नहीं होता, क्योंकि अब नहीं उनको, उनको इतनी फिक्र नहीं है शरीर की, उनको अपने दांत बुढ़ापे तक बचाकर नहीं रखने हैं, वो उनको कुछ भी नहीं करना है दांतों का, राइट, उनके दंत धोवन भी नहीं है। नेक्स्ट, स्नान नहीं है, दंत धोवन नहीं है, फिर कपड़े नहीं है, ठीक है, शरीर को ढकने के लिए उनके थोड़े से भी कपड़े नहीं होते हैं, उनके रात्रि के पिछले भाग में एक करवट से भूमि पर यानी जमीन पर कुछ समय सोते हैं। तो देखो, बहुत कम टाइम के लिए सोते हैं, जमीन पर सोते हैं, रात्रि के अंतिम प्रहर में सोते हैं और एक करवट में सोते हैं, ठीक है। एक करवट में क्यों सोते हैं वो हमने आपको बता दिया, थोड़े से टाइम के लिए क्यों सोते हैं कि सोने के लिए उन्होंने मुनि दीक्षा नहीं ली है, ठीक है, तो उनको प्रमाद करना अलाउड नहीं है, तो वो कम समय के लिए सोते हैं। और सही बोले तो जब हम मेडिटेशन ज्यादा करते हैं, पीस ऑफ माइंड ज्यादा होती है, तो हमारी ऑटोमेटिकली स्लीप कम होने लगती है, ठीक है, मतलब बॉडी ऑटोमेटिकली कम सोकर बहुत ज्यादा एनर्जी ले लेती है। तो इट्स लाइक दैट कि मुनिराज को ऑटोमेटिकली नींद की आवश्यकता ही नहीं पड़ती ज्यादा, क्योंकि उनको ना कोई टेंशन है मेंटल, ना कोई फिजिकल उनको है, बस चलने का ही लेबर है, बाकी मेंटल और फिजिकल कुछ नहीं है, ऑल द टाइम पीस ऑफ माइंड है, तो ऑटोमेटिकली कम होने से ही उनको सब कुछ सही हो जाता है, ठीक है। फिफ्थ, दिन में एक बार खाना खाते हैं। सिक्स्थ, खड़े खड़े खाना खाते हैं, हाथ में अंजलि में, वो प्लेट में नहीं खाते, स्पून वगैरह कुछ यूज नहीं करते। एंड लास्ट, केश लॉन्च करते हैं, वो अपनी शेविंग नहीं कराते हैं, हेयर कट नहीं कराते हैं, वो अपने हाथ से अपने बालों को निकाल लेते हैं। आप ट्राई करना अपने एक आध बाल प्लक करने का, मानस बहुत पेन होता है थोड़ा बहुत तो, बट हमने कई बार ये किया है, इतनी बार किया है, पहली मतलब यदि भाव पाहुल की गाथा को पढ़े तो हमने इतनी बार तो केश लोच किया है कि हमारे अकेले बालों का यदि हम घेर बनाए तो सुमेरु पर्वत तो उसके सामने कुछ भी नहीं लगे। इतनी बार हमने अपने केश लोच किए हैं, इतनी बार मुनि दीक्षा धारण करी है, इतनी बार पिछी का मंडल लिए कि पिछी का मंडल का वापस बंडल बनाए, पूरा एक सिंह बनाए तो वो सुमेरु पर्वत तो कुछ भी नहीं लगे उसके सामने। ऐसा इतनी बार हम दीक्षा ले चुके हैं, ये 28 नियमों का पालन कर चुके हैं, लेकिन क्या नहीं किया, अंतर रागादिक धरे जे, उस सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, उसके कारण ये पूरी प्रॉब्लम हो गई। ओह, मैंने बहुत टाइम ले लिया, 10 मिनट ज्यादा हो गए। देखो, 28 फूलगुण वापस जल्दी से, 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय, 5 समिति, 15, 6, 6 आवश्यक, फिर 7 शेष गुण, ये टोटल होते हैं 28 मूल गुण। किसी के भी पास ये 28 मूल गुण है, उनका लिंग कहलाता है सुलिंग या जिन लिंग, उनका वेश कहलाता है सच्चा वेश। बाकी जिसके भी एक भी मूल गुण गायब है और एकदम दिगंबर मुनिराज जैसा दिख रहा है, उसका लिंग कहलाएगा कुलिंग, वो हमारा गुरु नहीं है, ठीक है। तो ये धारे कुलिंग नहीं महत भाव, तो कुलिंग मतलब क्या, कुलिंग मतलब आपने तो ऊपर बोल दिया था ना, परिग्रह रहे तो हमने तो परिग्रह सारा छोड़ दिया, हमारा सुलिंग हो गया कि नहीं, आप अकेली नग्न हो गए हो, ये आपका सुलिंग नहीं है, जिनलिंग नहीं है। जिनलिंग मतलब कपड़े ना होना, वो तो एक वन ऑफ द पार्ट है, एक उसका एक पार्ट है, बाकी आपको क्रिया समिति से चलना है, एक करवट पर कुछ समय के लिए सोना है, आपको स्तुति करनी है, वंदना करनी है, सामायिक करना है, कल्चर करना है, इंद्रिय विषय करनी है, ये सारे काम है। ये सारे काम यदि होते हैं तो आपका सुलिंग है, नहीं तो वो भी आपका सुलिंग कहलाएगा। तो कुलिंग की पहचान के लिए सच्चे लिंग की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जो हमने आज थोड़ी सी डिस्कस करी। नेक्स्ट क्लास हम गुरुदेव श्री के बारे में थोड़ा सुनेंगे, ठीक है? सॉरी आप लोग का टाइम बहुत लिया मैंने, 10 मिनट, ठीक है? कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप लोग कभी भी पूछिए, ठीक है? अभी जिनमानी स्थिति करते हैं समीर, प्लीज आज आप जिनमानी स्थिति कराइए। भगवान नमो कार्य।